न्यू साउथ वेल्स राज्य के दूर दराज इलाकों के सामुदायिक कार्यकर्ताओं ने प्रवासी बुजुर्गों को मदद करने के लिए सरकार को अपील की है। लाइटनिंग रिज को अपना घर बना चुके इन प्रवासी बुजुर्गों के लिए एज केयर की सहायता उपलब्ध करवाना जरूरी है। 1960-70 के दशक में कोयले के खदान क्षेत्र में काम करने आए माइग्रेंट्स अब बुजुर्ग हो चुके हैं और अभी भी दूर दराज के इलाकों में या फिर खदान के इलाकों में कैंप में रहते हैं। सिडनी ओपेरा हाउस के निर्माण के दौरान घायल हुए मिजू मोटो मिवुच ने घायल होने के बाद लाइटनिंग रिज को अपना घर बनाया है।
This is a very good, healthy place. I've noticed it's been good for the body and everything else to live here. And the water helps.
मिजो की उम्र 80 साल है और वो अपने दोनों बेटों के साथ अभी भी ओपाल माइनिंग कैंप में रहते हैं। अन्य एक बुजुर्ग हैं हंगेरी में जन्मी एना वेस्टिज।
A lot of these people came in the 60s, 70s, mostly people who have worked on big projects in their youth, like the Snowy Mountains, the Dartmouth Dam project. And when they have finished their job, they came to Lightning Ridge to look for the big fortune. But then the years went by and a few found the fortune and most of them didn't. A lot of them didn't.
एना पिछले एक दशक से लाइटनिंग रिज में माइग्रेंट मददकर्ता के तौर पर मदद कर रही हैं। हाल ही में वो माइग्रेंट्स को डॉक्टर की अपॉइंटमेंट और जरूरी दस्तावेजीकरण में मदद करती हैं। ये मदद वे अन्य सामुदायिक समूह के अंतरिम सेवा के अतिरिक्त धन से कर रही हैं। लेकिन उनका कहना है कि पैसों के अभाव की वजह से उन्हें ये सेवा बंद करनी पड़ सकती है।
I am worried there is a huge gap now in the services for these people. They are isolated. A lot of them are alone. They don't have family support. They're getting older and they have more need for care. Who do they turn to?
सुश्री एना अब इस प्रयास में है कि सरकार के द्वारा माइग्रेंट वर्कर और वृद्धाश्रम की सेवा लाइटनिंग रिज में उपलब्ध करवाई जाए। इस बारे में न्यू साउथ वेल्स राज्य के बहुसांस्कृतिक मंत्रालय का कहना है कि वो उनकी अपील की समीक्षा कर रहे हैं। सरकार ने लाइटनिंग रिज के नजदीकी केंद्र में सेवाओं के लिए वार्षिक $30,000 उपलब्ध करवाए जाने की बात भी कही, लेकिन वहां की कर्मचारी लॉरेन क्रॉफर्ड का कहना है कि ग्राहकों को मदद करने के हेतु उनके पास पर्याप्त सुविधाएं नहीं है।
A lot of them don't like to sort of talk to somebody when it's not in their own language, and they don't always understand what we are trying to tell them, and vice versa. They will probably become even more isolated than what they are, and I'm frightened some of them are going to end up by dying out in the camps, and nobody will find them.
कौन सी सेवा को कितनी राशि का अनुदान दिया जाए, इसका आधार जनगणना के परिणामों पर निर्भर करता है। वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक लाइटनिंग रिज में आबादी 2,500 पाई गई। श्री एना का कहना है कि इस जनगणना में कैंप में रह रहे और दूर दराज के इलाकों के लोगों को शामिल नहीं किया गया था।
That is one of our biggest difficulties to count our population. People for various reasons don't like to fill in the census, so we always come short in that respect.
इस वर्ष यहाँ की आबादी करीब 8,000 तक पहुँचने की संभावना है, जिससे नई सेवाओं को आगे बढ़ाया जाएगा, ऐसी आशा की जा रही है। लाइटनिंग रिज के माइनिंग फ्लैट्स में 20 सालों से रह रहे पीटर पेराडोविक आर्थराइटिस से पीड़ित हैं। वो इस बीमारी के चलते हलन चलन नहीं कर पा रहे हैं। उनका कहना है कि श्री एना द्वारा प्रदान की जा रही सेवाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है।
By this property, she do all papers for me because I'm not writing English or reading, and she helped me so much. They'll close the office. Lot of people will be sorry.
श्री एना का कहना है कि स्वयंसेवक के तौर पर वो हमेशा लोगों की मदद करती रहेंगी, लेकिन नए वर्ष में सरकार कुछ नए कदम उठाए, उसके लिए वो आशावान है।